हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। तुम सीनियर से बात करो, मैं नाश्ते का देख कर आता हूँ। किसी को कुछ भी कहने का मौका दिए बिना अल्फांसो वहाँ से निकल गया। आप कैसे हैं डैड? अल्फांसो के जाते ही आंचल ने प्रारब्ध जी से पूछा। कैसा हो सकता हूँ? प्रारब्ध जी ने कुछ उदास लहजे में कहा। क्या हुआ डैड, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आंचल ने फिक्र करते हुए पूछा। उधर कॉल पर प्रारब्ध जी मुस्कुरा दिए। हाँ, कुछ दिन पहले तक तबीयत कुछ सुस्त लग रही थी, लेकिन तुम जब मेरी तबीयत के बारे में पूछती हो तो मेरी बिगड़ी हुई तबीयत भी बन जाती है बेटा, प्रारब्ध जी ने बहुत ही लगाव और प्यार जताते हुए कहा। लेकिन आप मेरे बारे में बिल्कुल नहीं पूछते। आंचल ने फ़ोन का स्पीकर ऑफ करते हुए उसे ब्लूटूथ से कनेक्ट किया और मुंह बनाते हुए बोली। अब वो वार्डरोब में से अपने लिए कपड़े निकाल रही थी। ये तो सरासर इल्ज़ाम है मुझ पर, मेरी तो एक एक सांस तुम्हारी ही खैरियत चाहती है, प्रारब्ध जी ने कहा। हाँ, इसीलिए तो मुझे इतना दूर रखकर छोड़ा है, और गाहे बगाहे कभी भूले भटके फ़ोन ले लेते हैं कि बेटी जिंदा है या मर गई, आंचल अपनी शिकायतों की पोटली खोल रही थी। ऐसा मत बोलो लाडो, आंचल को अपनी बात पूरी करने का मौका दिए बिना ही प्रारब्ध जी बोले। आंचल की बात पर वे तड़प उठे थे। मरे तुम्हारे दुश्मन, अगर मौत आनी भी होगी तो पहले मुझे आएगी, मेरे जीते जी तो तुम तक एक आंच भी नहीं पहुँचेगी। तुम तक पहुँचने के लिए मौत को भी मेरे से पहले होकर गुजरना पड़ेगा, प्रारब्ध जी बोल रहे थे। ऐसा क्यों बोल रहे हैं डैड? आई एम सॉरी, फ्लो में मुंह से निकल गया था, सॉरी अगेन, आंचल ने अपनी गलती मानते हुए कहा। वो ऐसी ही थी, गुस्से में भले ही कुछ बोल जाएगी लेकिन गलती समझ में आते ही तुरंत माफ़ी मांग लेती थी। और क्या बोलूं बेटा, तुमने बात ही ऐसी कही है, तुमको देखकर ही तो ऐसा लगता है जो मेरी बात बिना कहे ही समझ जाती है। लेकिन आज तुम भी नहीं समझ पा रही हो कि मैंने तुम्हें अपने से दूर क्यों रखा है। मेरे एक सवाल का जवाब दो बेटा, शायद तुम्हें मेरी मजबूरी समझ में आ जाए। क्या कोई अपनी सबसे बेशकीमती चीज़ अपने से दूर रखकर चैन की नींद सो सकता है? भले ही उसे उसने 7 तालों में बंद करके रखा हो, पर क्या फिर भी एक पल भी दिल से उससे इस कीमती चीज़ का ध्यान हटेगा, प्रारब्ध जी ने पूछा। नो, आंचल ने पूरी ईमानदारी के साथ छोटा सा जवाब दिया। वही बात मेरे साथ भी है बेटा, तुम मेरे से बहुत दूर भले ही रहती हो लेकिन मेरी नज़र एक पल के लिए भी तुमसे नहीं हटती। जिस तरह से तुम अपने फेवरेट टेडी बेयर के बिना रात में सो नहीं सकती, उसी तरह से मुझे भी नींद नहीं आती। बाप और बेटी में ये चीज़ सबसे ज़्यादा कॉमन होती है, क्या ये बात बताने की ज़रूरत है मुझे, प्रारब्ध जी ने पूछा। नो डैड, आंचल कुछ शर्मिंदा लहजे में बोली, मैंने जो कुछ भी कहा उसके लिए आई एम सॉरी, पर मुझे यहाँ पर अकेला लगता है, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, आंचल ने धीरे से कहा। मैं तुम्हारी फीलिंग समझता हूँ और मेरे दिल में भी यही तमन्ना है, और इसीलिए मैं अब तुमको हमेशा हमेशा के लिए अपने पास बुलाना चाहता हूँ, प्रारब्ध जी ने कहा। सच में? प्रारब्ध जी की बात सुनकर आंचल उछल पड़ी, और जिन कपड़ों को सजाकर वो वार्डरोब में रख रही थी वे सारे उसके उछलने के चक्कर में हाथ से लगकर नीचे गिर गए थे। लेकिन आंचल को उनकी फिक्र नहीं थी, वो तो आराम से बेड पर लेट चुकी थी। आप सच बोल रहे हो डैड? आप सच में मुझे अपने पास बुला रहे हो? आंचल ने दोबारा कन्फर्म करते हुए पूछा। प्रारब्ध जी मुस्कुरा दिए। हाँ, मैं चाहता हूँ कि तुम इंडिया वापस आ जाओ, हमेशा हमेशा के लिए मेरे पास, प्रारब्ध जी ने कहा। सच में? प्रारब्ध जी की बात सुनकर उछल पड़ी, और जिन कपड़ों को सजाकर वो वार्डरोब में रख रही थी वे सारे उसके उछलने के चक्कर में हाथ से लगकर नीचे गिर गए थे। लेकिन आंचल को उनकी फिक्र नहीं थी, वो तो आराम से बेड पर लेट चुकी थी। आप सच बोल रहे हो डैड? आप सच में मुझे अपने पास बुला रहे हो? आंचल ने दोबारा कन्फर्म करते हुए पूछा। प्रारब्ध जी मुस्कुरा दिए। हाँ, मैं चाहता हूँ कि तुम इंडिया वापस आ जाओ, हमेशा हमेशा के लिए मेरे पास, प्रारब्ध जी ने कहा। सच में? प्रारब्ध जी की बात सुनकर आंचल उछल पड़ी, और जिन कपड़ों को सजाकर वो वार्डरोब में रख रही थी वे सारे उसके उछलने के चक्कर में हाथ से लगकर नीचे गिर गए थे। लेकिन आंचल को उनकी फिक्र नहीं थी, वो तो आराम से बेड पर लेट चुकी थी। आप सच बोल रहे हो डैड? आप सच में मुझे अपने पास बुला रहे हो? प्रारब्ध जी मुस्कुरा दिए। हाँ, मैं चाहता हूँ कि तुम इंडिया वापस आ जाओ, हमेशा हमेशा के लिए मेरे पास, प्रारब्ध जी ने कहा। मैं तो आज की फ़्लाइट से आ रही हूँ डैड, आप भाई को मत बताना, मैं उन्हें सरप्राइज़ दूंगी, आंचल ने बेसब्री में कहा। ठीक है, मैं तुम्हारे भाई से कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन आज की फ्लाइट से मत आओ, इलेक्शन के बाद आना, प्रारब्ध जी ने कहते हुए जैसे आंचल की खुशी को ब्रेक दे दिया था। इलेक्शन के बाद? कौन से इलेक्शन के बाद? आंचल ने कुछ ना समझते हुए पूछा। इंडिया में हो रहे इलेक्शन के बाद। कुछ ही दिनों में यहाँ महाराष्ट्र में विधायिका के चुनाव होने वाले हैं। इलेक्शन में तुम्हारे फूफा जी भी कैंडिडेट हैं। अगर वे इलेक्शन जीत जाते हैं तो पूरे महाराष्ट्र में हमारी सरकार रहेगी, तो मैं तुम्हारी तरफ से बिल्कुल निश्चिंत हो जाऊंगा। लेकिन अभी उसमें एक प्रॉब्लम है, प्रारब्ध जी ने बताया। कौन सी प्रॉब्लम? अब कौन सी प्रॉब्लम है जो आंचल का रास्ता रोक रही है? क्या उस प्रॉब्लम को पता नहीं कि आंचल अपने रास्ते में आने वाले हर एक प्रॉब्लम को अपने आंच से जला देती है? आंचल ने फुल एटीट्यूड के साथ कहा। दिस एटीट्यूड इज लाइक माई गर्ल। ये अंदाज सिर्फ और सिर्फ मेरी बेटी के पास ही है, प्रारब्ध जी ने तारीफ करते हुए कहा। ऑफ कोर्स डैड, अपनी तारीफ वसूलते हुए आंचल दिल खोल कर मुस्कुरा दी। अब आप उस प्रॉब्लम का नाम तो बता दो जो आंचल दी ग्रेट के रास्ते में दीवार बनकर खड़ी है, आंचल ने पूछा। तुम्हारी यही खासियत तुम्हें सबसे अलग बनाती है आंचल, तुम कभी भी अपने टारगेट से नहीं भटकती। सुनो, उस प्रॉब्लम का नाम है राजवीर सिंह चौहान। इलेक्शन में जीत के लिए हमें राजवीर सिंह चौहान का सपोर्ट चाहिए, प्रारब्ध जी ने बताया। राजवीर सिंह चौहान? आंचल ने अपने होठों पर ये नाम दोहराया, ऐसा लगा जैसे वो याद करने के लिए सोच रही हो।